Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। यहूदी इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता और यूके के एक्सेटर विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग के प्रोफेसर इलन पेपे दो राज्यों के गठन के समाधान को एक इजरायली आविष्कार मानते हैं। दोस्तों, इसराइल के बारे में 10 मिथक पॉडकास्ट का ये 10वां और आखिरी एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। आपको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में मिथकों की चर्चा कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर लोग समझते हैं कि वो सही हैं जबकि ऐसा नहीं है। इस पॉडकास्ट के आखिरी एपिसोड में हम एक अन्य मिथक या झूठ की समीक्षा करने जा रहे हैं। इस मिथक के आधार पर फिलिस्तीन समस्या का एकमात्र समाधान दो देशों का गठन है। इलन पेपे अपनी किताब 10 माइथ्स अबाउट इसराइल में फिलिस्तीन में वर्तमान वास्तविकता के रूप में उपनिवेशवाद की स्थिति का उल्लेख करते हैं। उनका मानना है कि इसराइल द्वारा वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से के उपनिवेशीकरण से दो राज्यों के गठन पर आधारित कोई भी समाधान असंभव हो जाता है। वो कहते हैं कि इस तरह का समाधान पेश करके इसराइल एक असंभव स्क्वायर सर्कल बनाना चाहता है। ये आविष्कार इस सवाल के जवाब में था कि फिलिस्तीनी आबादी के बिना वेस्ट बैंक पर इसराइल का नियंत्रण कैसे बाकी रखा जाए। इस तरह इसराइल ने वेस्ट बैंक के एक हिस्से को स्वशासित बनाने यानी रातों रात एक देश बनाने का प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर, इसके बाद फिलिस्तीनियों को शरणार्थियों की वापसी, इसराइल के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए समान अधिकार, यरूशलम के भाग्य और अपनी मातृभूमि में सामान्य मानव जीवन जीने की अपनी सभी उम्मीदों से हाथ धोना पड़ेगा। इस आधारहीन मिथक की किसी भी आलोचना पर अक्सर यहूदी विरोधी लेबल चिपका दिया जाता है, लेकिन ठीक इसका उल्टा सच है। यानी नवीन यहूदी विरोध और इस मिथक के बीच एक संबंध है। दो राज्यों का समाधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक यहूदी देश यूरोप में यहूदी समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। इस दृष्टिकोण के तहत यहूदियों को दुनिया में कहीं और रहने के बजाय फिलिस्तीन यानी एक यहूदी देश में रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण यहूदी विरोधी की इच्छा के काफी करीब है, जबकि फिलिस्तीन एक यहूदी देश नहीं बल्कि एक अरब देश है। दूसरी ओर, दो राज्य का समाधान अप्रत्यक्ष रूप से इस धारणा को मजबूत बनाता है कि इसराइल और यहूदी धर्म एक है। इसलिए इसराइल इस बात पर जोर देता है कि वो जो कर रहा है यहूदी धर्म के लिए और सभी यहूदियों की ओर से कर रहा है। इसलिए जब इसराइल के व्यवहार की दुनिया भर में निंदा की जाती है तो इसे यहूदी धर्म के खिलाफ माना जाता है। पेपे यहूदियों पर ज़ायनीवाद के बीच तुलना करते हुए एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता ने सही बात कही थी लेकिन उसकी बड़े पैमाने पर आलोचना की गई। नेतन्याहू की नीतियों के लिए यहूदी धर्म को दोष देना ISIS या दाइश के व्यवहार के लिए इस्लाम को दोष देने के समान है। पेपे के मुताबिक ये तुलना जायज़ और सही है। पेपे की राय में दो सरकारों के गठन का समाधान उस लाश की तरह है जिसे समय समय पर मुर्दा घर से बाहर निकाला जाता है, सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं और ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो जीवित हो, लेकिन हर बार जब ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में कोई जान नहीं तो फिर से उसे मुर्दा घर में रख दिया जाता है। भविष्य में एकमात्र चीज़ जो बदल सकती है वो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार कर ले। इसी के साथ आप देखेंगे कि इसराइल ओस्लो समझौते में उल्लेखित क्षेत्र सी पर कब्जा पूरा कर लेगा जो वेस्ट बैंक का 50% है। यहाँ सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। पेपे का मानना है कि इसका बेहतरीन समाधान ये हो सकता है कि सभी पहले वाली स्थिति में पलट जाएं और फिर इस युद्ध के समाधान और उसके मूल कारण के बारे में विचार करें। इस तरह से शायद फिलिस्तीन की समस्या हल हो जाए, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से हो या हिंसक तरीके से, लेकिन हर हालत में इसका समाधान बहुत दुखद होगा। बहरहाल वर्तमान में इसराइल के मार्ग में रुकावट बनने और वेस्ट बैंक पर कब्जा पूरा करने से रोकने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से गजा में अभूतपूर्व तबाही मचाने और नस्ल कुशी से उसे किसी ने नहीं रोका। इसराइल को अपनी खतरनाक नीतियों पर आगे बढ़ने के लिए हिंसा और रक्तपात की जरूरत है। वेस्ट बैंक के आधे हिस्से पर पूर्ण कब्जा करना, नस्ल के आधार पर जबरन अलगाव की नीतियां लागू करना और फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ नस्लीय आधार पर भेदभाव करना जैसी क्रूर नीतियों पर अमल उसकी प्राथमिकता है। ऐसे में दो सरकारों के गठन का समाधान अप्रासंगिक और असंभव हो जाता है। प्राचीन काल में मुर्दों को उनके पसंदीदा आभूषणों के साथ दफन किया करते थे। इसराइल को उससे संबंधित कुछ मशहूर जुमलों जैसे कि मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतंत्र या शांति और समानता पसंद करने वाला देश या शरणार्थी समस्या के मानवीय समाधान पर जोर देने वाले शासन के साथ दफना दिया जाना चाहिए। ज़ायनवाद को एक उपनिवेशवाद के रूप में फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसराइल को नस्लीय भेदभाव से भरे एक आक्रामक शासन के रूप में और 1948 के नकबा दिवस को नस्लीय सफाई के रूप में फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। एलन पेपे के अनुसार इसराइल और उसकी नीतियों को इन नामों के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। पेपे इस आशा के साथ कि जिन मानचित्रों ने फिलिस्तीन के क्षेत्रफल को उसके ऐतिहासिक क्षेत्रफल के 10वें हिस्से तक कम कर दिया और फिर भी उसे शांति के मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, कहते हैं कि एक दिन ये सब सिमट जाएगा और फिलिस्तीन अपने ऐतिहासिक और भौगोलिक मानचित्र पर पलट जाएगा। ज़ायनवाद का हिंसक संघर्ष और युद्ध किसी भी तरह से वास्तविकता को नहीं बदल सकता। हालांकि उदारवादी ज़ायनी राजनेताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों की बहसों में ये शीर्षक लगातार बदलते रहे हैं, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। फिलिस्तीन हमेशा से समुद्र और नदी की सरजमीन का मालिक रहा है, ये अब भी वैसा ही। फिलिस्तीन की बदलती किस्मत भूगोल से नहीं बल्कि जनसांख्यिकी से चिन्हित होती है। 19वीं सदी के अंत में फिलिस्तीन पहुंचने वाले यहूदियों ने फिलिस्तीनी आबादी का आधा हिस्सा बनने और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने नस्लवादी विचारधारा और नस्लीय भेदभाव पर आधारित नीतियों के माध्यम से बाकी 50% मूल फिलिस्तीनियों पर नियंत्रण कर लिया। 2012 की गर्मियों में इजरायली मध्यवर्गीय यहूदियों ने अपने शासन की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। इस अवसर पर भी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वालों और समन्वयकों ने इजरायल के कब्जे और उपनिवेशवाद या नस्लीय भेदभाव पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इजरायल की नीतियों के कारण श्रेष्ठ जाति यहूदी फिलिस्तीन के खिलाफ आक्रामकता और फिलिस्तीनियों की संपत्ति की जब्ती जैसे लाभों से समान और समान रूप से लाभ नहीं उठा सके। ये एक हास्यास्पद बात थी जिसके लिए ज़ायनवादियों ने प्रदर्शन किया था। हालांकि किसी भी मामले में फिलिस्तीनियों की संपत्ति की लूटमार भी यहूदियों को सामान्य जीवन की गारंटी नहीं दे सकती, बल्कि फिलिस्तीनी संपत्ति की लूट को ख़त्म करके ही इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। यहूदी प्रगतिशील ताकतों को भी फिलिस्तीनियों के साथ सहानुभूति के अभियानों में उत्साहपूर्वक भूमिका निभानी चाहिए। पेपे कहते हैं कि फिलिस्तीन में एक राज्य के समाधान के बारे में चर्चा को शब्दों और तर्कों से आगे बढ़कर एक व्यवहारिक राजनीतिक कार्यवाही में बदलने का समय आ गया है। जब भूमि का हड़पना और संपत्ति से बेदखली इतने बड़े पैमाने पर हो सकती है तो पुनः स्वामित्व और शांति की स्थापना भी इतने ही बड़े पैमाने पर हो सकती है। अगर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच संबंध न्याय संगत और लोकतांत्रिक आधार पर बाहर हो जाते हैं तो न तो पुराने और दफना दिए गए दो राज्य के समाधान को मंजूरी दिए जाने की ज़रूरत है और न ही विभाजन के तथाकथित तार्किक समाधानों को। यहाँ भी इन यहूदियों के साथ अंतर किया जाना चाहिए जो फिलिस्तीनियों के साथ संबंधों के लिए निर्माण और संरचना और समान स्थिति को बदलने पर चर्चा करने के इच्छुक हैं, न कि उन यहूदियों के साथ जो ऐसा करने के इच्छुक नहीं है, भले ही वे अवैध बस्तियों में या कहीं और रहते हों। इसके बाद एरन पेपे कई दशकों के इजरायली कब्जे की ओर इशारा करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इजराइल 21वीं सदी में सेटलमेंट उपनिवेशवाद पर आधारित एक शासन है। सेटलमेंट उपनिवेशवाद को दुनिया के अन्य हिस्सों में नए श्वेत राष्ट्रों के निर्माण के लिए यूरोपीय लोगों के आंदोलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, वो भी उन देशों में जहां कभी लोगों की अपनी सरकार और अपना साम्राज्य हुआ करता था। उपनिवेशवादियों ने अपने उपनिवेश के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया, उन्मूलन संरचना यानी नरसंहार सहित सभी संभावित तरीकों से मूल लोगों से छुटकारा पाना, दूसरा अमानवीय संरचना यानी गैर यूरोपीय लोगों को हीन और दुय्यम दर्जे के लोगों के रूप में मान्यता देना, इसलिए कि वे मूल निवासियों के साथ समान अधिकार पाने के लायक नहीं हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी इन दो शत्रुतापूर्ण संरचनाओं के कारण नस्लीय भेदभाव संरचना का निर्माण हुआ था, लेकिन फिलिस्तीन में ये संरचना आधिकारिक तौर पर 1948 में स्थापित की गई, अर्थात उसी साल जब ज़ायोनी आंदोलन ने फिलिस्तीन में नस्लीय सफाई अभियान उन्मूलन और अमानवीयकरण के रूप में लागू किया। मानवाधिकारों का उल्लंघन कई अन्य जगहों पर भी होता है, लेकिन इसराइल इस क्षेत्र में सबसे आगे है। पश्चिम में इसराइल को एक विशिष्टता प्राप्त है और इससे पहले ज़ायोनीवाद को भी हासिल थी, इसलिए वहाँ आज भी कुछ नहीं बदला है। यहाँ तक कि अरब जगत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की कोई भी पश्चिमी आलोचना एक मजाक में बदल गई है, यानी पश्चिमी लोगों के लिए अरब जगत और पश्चिम एशिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बात करना हास्यास्पद है। पेपे का कहना है कि ज़ायोनी सेटलर्स फिलिस्तीनी भूमि का आंतरिक और आवश्यक अंग बन गए हैं और उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए उन्हें फिलिस्तीन के भविष्य का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये मूल फिलिस्तीनियों के निरंतर उत्पीड़न और बेदखली की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आप इसराइल के बारे में 10 मिथक पॉडकास्ट का 10वां और अंतिम एपिसोड सुन रहे हैं। ये पॉडकास्ट एरन पेपे की किताब 10 माइथ्स अबाउट इसराइल पर आधारित था। कई लोग सोचते हैं कि इसराइल के बारे में फैलाए गए मिथक सही हैं, लेकिन जैसे कि पेपे ने विश्लेषण किया, ये सच नहीं है। पेपे स्वयं अपनी पुस्तक के परिचय में कहते हैं कि किसी भी स्थिति में वो एक इजरायली हैं, हालांकि वो ज़ायोनी शासन की आलोचना करते हैं, लेकिन एक यहूदी और ज़ायोनी के रूप में वो शासन के अस्तित्व की निरंतरता में विश्वास करते हैं, इसीलिए वो उसके विघटन के लिए कोई तर्क या कोई सबूत पेश नहीं करते। वो अपने अंतिम प्रस्ताव में कहते हैं कि सेटलर्स फिलिस्तीनी भूमि का अभिन्न अंग हैं और अब उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता और उन्हें हर हाल में भविष्य का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पेपे अपनी पूरी किताब में ज़ायोनी परियोजना के उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के आधार पर इसके निर्माण और मूल लोगों के मालिकाना हक की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उपनिवेशवादियों का खुलकर समर्थन करते हैं, जबकि प्रतिरोध आंदोलन के स्पष्ट और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार सभी उपनिवेशवादियों को उनके मूल देशों में वापस लौट जाना चाहिए। इसका मतलब वो देश हैं जहाँ से वे या उनके पिता या दादा फिलिस्तीन जाकर बसे थे। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम विभिन्न विषयों पर बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट पेश करते हैं, जिन्हें आप हमारी वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देख और सुन सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपके लिए दिलचस्प था तो कृपया इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।